एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मतलब बहुत करीब है, लेकिन शायद हम उसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हम बात कर रहे हैं नदियों की। ये सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि हमारी धरती की कह सकते हैं धमनियां हैं, जो सभ्यता को सींचती हैं
और जीवन को संभव बनाती हैं।
बिल्कुल। और इसी गहरी समझ के लिए आज हम निक मिडिल्टन की किताब रिवर्स पर चर्चा करेंगे। निक एक भूगोलवेत्ता है, पर उनकी किताब सिर्फ विज्ञान के बारे में नहीं है।
सही।
ये नदियों की आत्मा को छूने की एक कोशिश है, ये समझने की कि वे इस ग्रह को कैसे बनाती हैं और कैसे हम उनके साथ अपना रिश्ता फिर से जोड़ सकते हैं।
और ये आज के समय में बहुत जरूरी भी लगता है। हम हर तरफ क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और प्रदूषण की बातें सुनते हैं।
हाँ, हर रोज। तो ऐसे में अपनी जीवन रेखाओं यानी नदियों को समझना शायद सबसे पहला कदम होना चाहिए। हमारी चर्चा का फोकस नदियों की असल भूमिका और उनके साथ हमारे रिश्ते का सही लक्ष्य क्या हो, इस पर रहेगा।
तो चलिए, शुरू करने से पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं। निक मिडिल्टन कोई मतलब आम लेखक नहीं है। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिकल ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी असली लैब कोई क्लासरूम नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। उन्होंने 50 से ज्यादा देशों में जमीनी स्तर पर काम किया है,
आर्कटिक से लेकर रेगिस्तानों तक।
हाँ, आर्कटिक की बर्फीली ठंड से लेकर सहारा के तपते रेगिस्तान तक।
हाँ, और मुझे लगता है यही बात उनके काम को खास बनाती है। वो सिर्फ आंकड़ों और सिद्धांतों की बात नहीं करते, वो विज्ञान को कहानियों में पिरोते हैं।
सही कहा।
उन्होंने नदियों को सिर्फ एक भौगोलिक तत्व की तरह नहीं देखा, बल्कि ये भी समझा है कि अलग अलग संस्कृतियों में उनका आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व क्या है।
बिल्कुल, ये विज्ञान और इंसानियत का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो विज्ञान और संस्कृति के बीच एक पुल बनाते हैं। अब अगर किताब के मुख्य विचार पर आएं, तो वो बहुत सरल लेकिन गहरा है।
अच्छा।
किताब कहती है कि नदियां धरती की जीवन रेखाएं हैं, बिल्कुल हमारे शरीर की धमनियों मतलब आर्टरीज की तरह।
अच्छा, ये एनालॉजी तो बहुत दिलचस्प है।
हाँ, और इस एनालॉजी को हम आगे और एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये समझने में मदद करता है कि एक जगह का प्रदूषण पूरे सिस्टम में जहर कैसे घोल सकता है।
मतलब जैसे नसें हमारे शरीर में खून और पोषक तत्व पहुंचाती हैं, वैसे ही नदियां पानी, उपजाऊ मिट्टी और जीवन को धरती के कोने कोने तक ले जाती हैं।
बिल्कुल। और इसी आधार पर मिडिल्टन एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि हम इंसान इन जरूरी जलमार्गों के साथ एक स्थायी यानी एक सस्टेनेबल रिश्ता कैसे बना सकते हैं।
और इसका जवाब क्या देते हैं वो?
इसका जवाब वो देते हैं कि हमें सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। हमें नदियों को सिर्फ एक संसाधन या रिसोर्स की तरह देखना बंद करना होगा, जिसका हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं।
उन्हें एक जीती जागती चीज की तरह समझना होगा।
हाँ, हमें उन्हें एक जटिल जीवित प्रणाली के रूप में समझना होगा, जिसका अपना एक जीवन है, अपनी एक लय है और अपना एक अधिकार है।
मुझे लगता है हम सब नदियों को देखकर बड़े हुए, पर शायद ही कभी सोचते हैं कि ये बनती कैसे हैं। किताब इस बुनियादी सवाल को कैसे समझाती है? क्या ये सिर्फ बारिश का पानी है जो एक साथ बहने लगता है?
ये एक बेहतरीन सवाल है। किताब हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की याद दिलाती है, मतलब पानी का भाप बनना, बादल बनना और फिर बारिश के रूप में जमीन पर लौटना।
हाँ, वो तो स्कूल में पढ़ा था।
सही। तो नदियां इस साइकिल का सबसे अहम जमीनी हिस्सा हैं, लेकिन मिडिल्टन एक जरूरी बात बताते हैं कि नदी सिर्फ वो पानी नहीं है जो हमें एक चैनल में बहता दिखता है।
तो फिर क्या है?
नदी का मतलब है पूरा ड्रेनेज बेसिन या वाटरशेड।
वाटरशेड यानी वो पूरा इलाका, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जहां से बारिश का सारा पानी बहकर उस एक नदी में इकट्ठा होता है।
बिल्कुल। तो एक नदी अपने आसपास के पूरे परिदृश्य का आईना होती है। अगर उसके वाटरशेड के जंगलों में कटाई हो रही है या खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सब कुछ
बहकर नदी में आ जाता है।
हाँ, सब कुछ। नदी की सेहत उसके पूरे इलाके की सेहत बताती है।
किताब में एक जगह लेखक नदियों को धरती की सबसे बड़ी मूर्तिकार कहते हैं, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। वो ऐसा क्यों कहते हैं?
ये एक शानदार उपमा है। मिडिल्टन नदी के तीन मुख्य काम बताते हैं। पहला है कटाव यानी इरोजन, जमीन को काटना। दूसरा है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, उस टूटे हुए मलबे को जिसे हम गाद कहते हैं अपने साथ बहाकर ले जाना। और तीसरा है जमाव, डेपोजिशन, मतलब उस मलबे को कहीं और जमा कर देना।
ओ, अमेरिका का विशाल ग्रैंड कैनियन या हमारे हिमालय की गहरी घाटियां, ये सब नदियों की लाखों साल की इसी मूर्ति कला का नतीजा है।
हाँ बिल्कुल, नदियां धीरज के साथ लाखों सालों तक धरती को तराशती हैं, और जहां वो धरती को आकार देती हैं, वहीं वो जीवन और सभ्यता का गलियारा भी बनती हैं।
अच्छा,
सैल्मन जैसी मछलियों के बारे में सोचिए, जो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मीठे पानी की नदी में और दूसरा समुद्र के खारे पानी में बिताती हैं। उनका तो पूरा जीवन चक्र ही नदियों पर निर्भर है।
और इंसानी सभ्यता की कहानी तो नदियों के बिना अधूरी है। हम हमेशा सुनते हैं कि मिस्र को नील नदी का तोहफा कहा जाता है।
हाँ,
इसका मतलब यही है कि नील की बाढ़ अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती थी, उसी ने वहाँ खेती और एक महान सभ्यता को संभव बनाया।
यही कहानी सिंधु घाटी सभ्यता की है, जो सिंधु नदी के किनारे फली फूली, और मेसोपोटामिया की, जो दजला और फरात नदियों के बीच बसी थी।
सही बात है।
असल में नदियां हमारी पहली सड़कें थीं, हमारे पहले हाईवे। इन्हीं के जरिए व्यापार होता था, विचार फैलते थे और संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती थी।
आपने सभ्यता की बात की और मुझे लगता है कि नदियों के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी रहा है। गंदा को माँ कहना सिर्फ एक कहावत तो नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, और किताब इस पर बहुत जोर देती है। मिडिल्टन कहते हैं कि दुनिया भर की संस्कृतियों में नदियों को पवित्र मानना कोई अंधविश्वास नहीं है। ये इस गहरी समझ से आता है कि हमारा अस्तित्व इन नदियों पर ही निर्भर है। ये जीवन देने की उनकी क्षमता के प्रति एक सम्मान है। हमारे पूर्वज जानते थे।
तो फिर क्या बदला? ये सम्मान और साथ रहने की भावना नियंत्रण और काबू करने की इच्छा में कैसे बदल गई?
औद्योगिक क्रांति, विज्ञान और इंजीनियरिंग की तरक्की के साथ हमने सोचना शुरू कर दिया कि हम प्रकृति को जीत सकते हैं। हमने नदियों को नियंत्रित करने के लिए बड़े बड़े बांध बनाए, जैसे अमेरिका में हूवर डैम या चीन में बना दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम।
तो अगर नदियां धमनियों की तरह हैं, तो एक बड़ा बांध बनाना क्या ये धमनी में ब्लॉकेज पैदा करने जैसा नहीं है?
ये एकदम सटीक एनालॉजी है। बांध बनाने के फायदे जरूर हुए, हमें बिजली मिली, सिंचाई के लिए पानी मिला।
हाँ, बाढ़ पर भी कुछ नियंत्रण हुआ।
हुआ, लेकिन इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। बांध मछलियों के प्राकृतिक रास्ते को रोकते हैं, वो उस उपजाऊ मिट्टी को भी रोक लेते हैं जिसे डेल्टा तक पहुंचना चाहिए।
अच्छा।
और सबसे बड़ी मानवीय कीमत, इन परियोजनाओं के कारण दुनिया भर में लाखों लोगों को अपने घरों और जमीनों से विस्थापित होना पड़ा है।
और यही हमें आज के संकट तक ले आता है। मुझे लगता है अरल सागर की कहानी इसका सबसे दुखद उदाहरण है।
बिल्कुल, कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील अरल सागर को भरने वाली दो नदियों का पानी सोवियत संघ ने रेगिस्तान में कपास उगाने के लिए मोड़ दिया।
और नतीजा?
नतीजा, एक पूरा समुद्र लगभग गायब हो गया। आज वहां रेत के समंदर में जंग लगे जहाज पड़े हैं। ये एक भयानक त्रासदी।
और अब तो पानी को लेकर देशों के बीच तनाव भी बढ़ रहा है। ये हाइड्रोपॉलिटिक्स शब्द अब अक्सर सुनने में आता है।
हाँ, जब कोई नदी कई देशों से होकर बहती है, जैसे नील या ब्रह्मपुत्र, तो पानी के बंटवारे को लेकर तनाव पैदा होता है। ऊपर बैठा देश बांध बनाकर पानी रोक सकता है,
जिससे नीचे वाले देश में सूखा पड़ सकता है।
हाँ, ये आने वाले समय की एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक चुनौती है।
ये सब सुनकर थोड़ी निराशा होती है। क्या किताब कोई उम्मीद भी दिखाती है? क्या हम इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं?
हाँ, और यही किताब की सबसे खूबसूरत बात है। अंत निराशा में नहीं होता, उम्मीद भी है। मिडिल्टन लंदन की टेम्स नदी का शानदार उदाहरण देते हैं।
अच्छा, टेम्स का?
हाँ, औद्योगिक क्रांति के समय प्रदूषण के कारण ये नदी जैविक रूप से एक मृत नदी बन गई थी, जिसमें कोई जीवन नहीं बचा था। लोग उसे एक खुला गटर कहते थे।
और आज एक बात मेरे मन में बैठ गई है, वो ये कि हम नदियों को टुकड़ों में देखते हैं। हम सोचते हैं ये मेरे राज्य की नदी है, ये तुम्हारे देश की नदी है।
हाँ, जबकि नदी को सीमाओं से फर्क नहीं पड़ता।
बिल्कुल, उसे राजनीतिक सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता।
ये धरती के सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह है। जब एक राज्य में किसी नदी पर बड़ा बांध बनता है, तो हो सकता है कि नीचे वाले राज्य में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाए। और किताब की एक लाइन है कि जब हम नदी में जहर घोलते हैं, तो हम सिर्फ एक स्थानीय जलमार्ग को नुकसान नहीं पहुंचाते, हम उन नसों में जहर घोल रहे हैं जो हमें समुद्र से, बादलों से और एक दूसरे से जोड़ती हैं।
और एक और बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, वो है नियंत्रण का भ्रम। हम सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े बांध और तटबंध बनाकर नदियों को जीत लिया है।
हाँ, लेकिन प्रकृति हमसे कई ज्यादा शक्तिशाली है।
बिल्कुल, उत्तराखंड और केरल में आई विनाशकारी बाढ़ हमें बार बार ये याद दिलाती है कि जब नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो हमारे सारे इंजीनियरिंग चमत्कार धरे रह जाते हैं।
इसीलिए मिडल्टन कहते हैं कि एक सभ्यता का असली माप ये नहीं है कि वो कितना पानी नियंत्रित कर सकती है,
बल्कि ये है कि वो अपनी नदियों की प्राकृतिक लय के साथ कितनी अच्छी तरह रह सकती है।
हाँ, ये विकास की हमारी पूरी आधुनिक धारणा पर ही सवाल उठा देता है।
मैं जब भी दिल्ली में यमुना को देखती हूँ तो ये सोचना मुश्किल होता है कि ये वही पवित्र नदी है। एक व्यक्तिगत दुख जैसा लगता है, हमारा नदियों के साथ रिश्ता अब एक तरफा हो गया है।
हाँ, हम सिर्फ ले रहे हैं, वापस कुछ नहीं दे रहे।
बिल्कुल,
और यही किताब का चौथा और अंतिम संदेश है। नदियां हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का बैरोमीटर हैं। अगर हमारी नदियां बीमार हैं, प्रदूषित हैं या सूख रही हैं, तो ये सिर्फ नदियों की समस्या नहीं है।
ये इस बात का संकेत है कि हमारा पूरा पर्यावरण, हमारा पूरा इकोसिस्टम गहरे संकट में है। ये सब बहुत बड़े और गहरे विचार हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान क्या कर सकता है? क्या ये सब सिर्फ सरकारों और बड़ी संस्थाओं का काम है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे स्तर पर होती है। सबसे पहली और आसान चीज है अपने पानी के उपयोग के प्रति सचेत होना। जब हम नल खुला छोड़ते हैं तो ये सोचना कि ये पानी किसी नदी से ही आया है, और ये भी समझना कि हमारे घर से निकलने वाला गंदा पानी आखिरकार किसी नदी में ही जाता है।
और शायद अपनी स्थानीय नदी, झील या तालाब के बारे में जानना भी एक अच्छा कदम हो सकता है। वो कैसी है, उसकी कहानी क्या है?
निश्चित रूप से। क्या उसके आसपास कोई समुदाय उसकी सफाई या संरक्षण के लिए काम कर रहा है? अक्सर ऐसे छोटे छोटे समूह होते हैं जो शानदार काम कर रहे होते हैं।
हाँ, उनका समर्थन करना या उनके साथ जुड़ना एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है।
और अंत में अपना नजरिया बदलना। जब भी हम टीवी पर बाढ़ या सूखे की खबर सुने तो उसे सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की तरह ना देखें।
उसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करें।
हाँ, ये समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे नदी के साथ हमारे बदलते रिश्ते की क्या कहानी है। ये आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है।
इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये था कि नदियों को लेकर हमारा नजरिया कितना संकीर्ण है। हम उसे बस पानी का स्रोत या बिजली बनाने का जरिया या गंदगी फेंकने की जगह मानते हैं, जबकि ये किताब बताती है कि नदी एक पूरा जीवित संसार है। वो एक इतिहासकार है और एक संस्कृति की निर्माता भी है।
और मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक और उम्मीद जगाने वाली बात थी नदियों को पुनर्जीवित करने की संभावना।
हाँ, वो टेम्स वाला उदाहरण।
हाँ, ये जानना कि लंदन की टेम्स जैसी एक मृत नदी फिर से जीवन से भरपूर हो सकती है एक बहुत बड़ी उम्मीद देता है। ये बताता है कि नुकसान हमेशा स्थायी नहीं होता, बशर्ते हम सही कदम उठाने की इच्छा शक्ति दिखाएं।
सही बात है, गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो श्रोताओं के लिए हम एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
जरूर।
अगर आपके शहर या गांव से गुजरने वाली नदी बोल सकती, अगर उसमें आवाज होती, तो वो हमारे बारे में, हमारे समाज के बारे में, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी सुनाती? क्या वो एक गर्व की कहानी होती या एक दुख की? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।